আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান কানা নাবিয়্যাম ওয়া আদাম বাইনাল মাই ওয়াত-তিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইযা জুলজিলাতিল আরযু জিলজালাহা ওয়া আখরাজাতিল আরযু আসকালাহা وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم। بارگاہ رسالت میں درود پاک نذرانہ پیش کیجیے। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন সালাতান দাইমাতান বিদাওয়ামিল মালিকুল হাইয়্যুল কাইয়্যুম। কুরআনে মাজিদ ফুরকানে হামিদ কি এক বহুত হি আহম আর ফজিলত ওয়ালি সূরত আপকে সামনে তিলাওয়াত করনে কা শরফ হাসিল কিয়া। পহলে ইসকা তরজুমা আর ইসকে বাদ ইসকে মুতালিক গুজারিশাত। ওয়া তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। ইরশাদ রব্বানি হুয়া ইযা জুলজিলাতিল আরযু জিলজালাহা, জব পুরি জমিন জলজলে কি শিদ্দত সে হিলা দি জায়েগি। ওয়া আখরাজাতিল আরযু আসকালাহা, আর জমিন আপনা বোঝ নিকাল বাহার করেগি। ওয়া ক্বালাল ইনসানু মা লাহা, আর ইনসান কহেগা কে ইসে ক্যা হুয়া। ইয়াউম ইযিন তুহাদ্দিসু আখবারাহা, উস দিন জমিন আপনি তমাম খবরে বয়ান করেগি। বিআন্ন রাব্বাকা আওহা লাহা, কিউকে আপকে রব নে উসে ইসকা হুকুম দিয়া হ্যায়। ইয়াউম ইযিন ইয়াসতুরুন নাসু আশতাতাল লিয়ুরাউ আমালাহুম, উস দিন লোক মুখতালিফ আহওয়াল মে লৌটেঙ্গে তাকে উন্হে উনকে আমাল দিখায়ে যায়। ফমন ইয়ামাল মিসকাল যাররাতিন খায়রান ইয়ারা, সো জো যাররা বরাবর ভি নেকি করেগা ওয়ো উসকা সিলা দেখেগা। ওয়মন ইয়ামাল মিসকাল যাররাতিন শাররান ইয়ারা, আর জো যাররা বরাবর ভি বুরাই করেগা ওয়ো উসকা আযাব দেখেগা। ইয়ে ইন আয়াত বাইনাত কা তরজমা হ্যায়। আল্লাহ তবারক ও তাআলা নে ইস সূরা মুবারকা মে কিয়ামত কা মনজর বয়ান কিয়া হে। কবল ইসকে কি হাম উস পর গুফতগু করেন, পহলে ইসকি ফজিলত আহাদিস কি রোশনি মে দেখতে হ্যায়। হযরত আনাস বিন মালিক রাদি আল্লাহ তাআলা নু বয়ান করতে হ্যায় কি নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নে ফরমায়া, জিসনে ইযা জুলজিলাতিল আরযু জিলজালাহা, ইয়ানি ইয়ে সূরত পড়ি ওয়ো নিসফ কুরআন কে বরাবর হ্যায়। জিসনে কুল হু আল্লাহু আহাদ পড়ি ওয়ো তিহাই কুরআন কে বরাবর হ্যায়। জিসনে কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন পড়ি ওয়ো রুবু কুরআন কে বরাবর হ্যায়। ইস হাদিস কো সুনন তিরমিজি নে বয়ান কিয়া হ্যায়। দূসরি হাদিস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদি আল্লাহু তাআলা আনহুমা বয়ান ফরমাতে হ্যায়, এক শখস নে নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে পাস আকর কহা, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুঝে কুরআন পড়াইয়ে। আপনে ফরমায়া, জাওাতে আলিফ লাম রা, মসলান আলিফ লাম মিম রা, ইয়াহাঁ সে তিন সূরতে পড়ো। উস শখস নে কহা, মেরি উমর জ্যাদা হো গই হ্যায়, মেরা দিল সখত হো গয়া হ্যায়, মেরি জবান মোটি হো গই হ্যায়। আপনে ফরমায়া, ফির জাওাতে হামিম, ইয়াহাঁ সে তিন সূরতে পড়ো। উসনে ফির পহলি বাত দোহরাই আর কহা, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুঝে কোই সূরত জামে পড়াই। তব আপ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নে উসে ইয়ে সূরত, ইয়ানি ইযা জুলজিলাতিল আরযু জিলজালাহা, ইয়ে সূরত আপ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নে উস শখস কো পড়াই। হত্তা কে ইসকো পড়া কর আপ ফারিগ হুয়ে তো উসনে কহা, উস জাত কি কসম जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैं इस पर कोई ज्यादती नहीं करूंगा। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स कामयाब हो गया, ये कामयाब हो गया, ये कामयाब हो गया। इस हदीस को सुनन अबू दाऊद, मुसनद अहमद और सुनन कुबरा लिन्नसाई, इन तमाम कुतुब में यह हदीस मौजूद है। आप गौर कर सकते हैं कि सूरह मुबारका की फजीलत कितनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसने ये सूरत पढ़ी ये निस्फ कुरान के बराबर है। हमें चाहिए कि यह मुबारक और मुकद्दस सूरत हर रोज़ पढ़ें, बार बार पढ़ें, ताकि हमें कम से कम निस्फ कुरान का सवाब हदीस की रोशनी में जो सरकार ने बताया हमें मिले, और यकीनन मिलेगा। तो इस सूरत को अगर कोई अपना मामूल बना ले, मुस्तकिल पढ़ता रहे, बार बार पढ़े, रोज़ाना पढ़े, या रोज़ाना किसी एक नमाज के बाद इस सूरत को पढ़े, इंशाअल्लाह ताला रब की रहमत से उम्मीद है कि निस्फ कुरान के बराबर सवाब उसको यकीनन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अब आइए ज़रा सा इस पर गौर करें। अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरह मुबारका में 8 आयतें रखी, 8 आयत इसमें मौजूद हैं। इस सूरत की इब्तदाई आयत में कयामत की कैफियत को बयान किया, इसके बाद लोगों के अहवाल बयान किए, फिर नेकी और बदी पर जजा और सज़ा, इसका बयान किया। ये तमाम चीज़ें इस सूरत के अंदर बयान हुई हैं। क़यामत की कैफियत, क़ुरान कहता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन पूरी शिद्दत से हिला दी जाएगी, यानी जलजले की शिद्दत से ज़मीन हिलेगी। आप देखते हैं जब जलजला आता है तो कैसी से कैसी बड़ी इमारत हो वो हिल जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें ज़मीन पर है ना। जितनी इमारतें हैं सब ज़मीन पर, जितनी दुकान सब ज़मीन पर, जितने मकान सब ज़मीन पर, जितने बागात सब ज़मीन पर, जितनी भी चीज़ें हैं सब ज़मीन पर हैं। भाई हमने मकान बनाए ना, अगर ज़मीन ना होती तो मकान कैसे बनते, ज़मीन ना होती तो दुकानें कैसे बनती, ज़मीन ना होती तो पूरा शहर, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया ये कैसे आबाद होती। तो ये सब ज़मीन पर, तो जिस पर ये चीज़ें मौजूद हैं जब वही हिलने लगे तब क्या होगा, यकीनन वो तमाम चीज़ें जो हैं वो गिर जाएंगी। यानी बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं, आप देखते हैं ना जब जलजला आता है ज़मीन हिलती है, इमारतें हिलना शुरू होती, ज़मीन फटती है, इमारतें उसके अंदर चली जाती। एक सेकंड में, एक मिनट में, देखते ही देखते बड़ी से बड़ी इमारत सब ज़मीन के अंदर, बड़ी बड़ी दुकानें मकानात ज़मीन के अंदर। क्यों? इसलिए कि ये ज़मीन पर हैं। इसकी मिसाल ये समझे कि जैसे ये टेबल है, इस पे आप कितनी भी चीज़ें रख दें लेकिन जब ये हिलेगी तो सारी चीज़ें हिलें, वो उसी के ऊपर है ना। और ज़मीन में कितनी आप गहरी बुनियाद खोद दें, जब ज़मीन फटती है सब चीज़ें अंदर। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत में किसी को दखल नहीं। जब ये जलजला आता है ना, साइंस ने आज कितनी तरक्की कर ली, लेकिन साइंस का कोई आला ऐसा नहीं कि जो जलजला आने से पहले मुतनब्बे कर दे कि जलजला आ रहा है, इस शहर में आएगा, इस जगह आएगा, इतने इलाके में आएगा, इस शहर में आएगा, उसका तायुन, वक्त का तायुन, उसकी मकदार, उसके आने की रफ्तार कोई नहीं बता सकता। हाँ ये ज़रूर होता है कि जब जलजला आया ज़मीन हिली, इमारतें हिली, ज़मीन के अंदर चली गई, मकानात गिर गए, टूट गए, लोग बहुत से इसी में हलाक हो गए। जब वो जलजला रुक गया तब ये बताते हैं कि हाँ जी इतनी रफ्तार से जलजला आया था। आप देखते हैं ना अखबारात में आता है, खबरों में आता है, मुख्तलिफ चैनल पर, कि ये फला इलाके में या फला शहर में या फला मुल्क में जो जलजला आया था उसकी रफ्तार ये है। ना तो हमारे पास कोई ऐसा इंतज़ाम है कि आने से पहले बता दिया जाए कि आ रहा है, इतनी रफ्तार से आ रहा है और इतने हिस्से में आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि उसको रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं। जैसे सैलाब आ रहा है, आप उसको रोकने के कोई ना कोई इंतज़ाम आप करें, लेकिन जलजला ऐसी चीज़ है कि जो मिनटों सेकंडों में आता है, और इमारतें, मकानात, दुकान, बागात, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब के सब ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। यानी इंसान की आजजी का ये हाल है, उसकी माजूरी का ये हाल है, उसकी मजबूरी का ये हाल है कि जब जलजला आए, कितनी ही तरक्की वो कर ले, इसको रोकने का उसके पास कोई इंतज़ाम नहीं, और आने से पहले वो बता भी नहीं सकता कि आ रहा है। बहुत से इलाकों में बहुत से साइंसदानों ने बताया भी फ़लाँ जगह आएगा, फ़लाँ जगह आएगा, लेकिन जब आया, जिस रफ्तार से आया, जिन इलाकों को तबाह किया, जिन जगहों को तबाह किया, जिन इमारतों, दुकानों, मकानों को तबाह किया, इसको बताने का कोई इंतज़ाम नहीं। खैर, बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये भी क़यामत की एक निशानी है, और अल्लाह तबारक व ताला इस सूरह मुबारका की इब्तदाई आयत में जो क़यामत का हाल बयान कर रहा है कि जब क़यामत होगी तब क्या होगा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन, पूरी ज़मीन, यानी कि निस्फ ज़मीन, आधी ज़मीन या पौनी ज़मीन, पूरी ज़मीन, जितनी भी ज़मीन, कुरान कहता है जब पूरी ज़मीन जलजले की शिद्दत से हिला दी जाएगी। अब गौर करो कि जब पूरी ज़मीन जलजले की शिद्दत से हिला दी जाए तो फिर क्या होगा। पूरी दुनिया में जितनी इमारतें हैं, जितने मकानात हैं, जितनी दुकानें हैं, ये सब के सब तबाह हो, सब गिर जाएंगी, मिट जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि जिस वक्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली बार सूर फूकेंगे, उस वक्त ज़मीन ज़बरदस्त जलजले से हिलेगी, यानी ज़मीन में एक अजीब हिजान, एक जलजला पैदा होगा जिससे हर चीज़ तहस नहस हो जाएगी, उलट पुलट हो जाएगी। ज़ाहिर है जिस ज़मीन पर ये चीज़ें कायम हैं, जब ज़मीन हिलने लगेगी, इमारतें गिर जाएंगी, मकानात, दुकानें, जितनी भी चीज़ें हैं, सब उलट पुलट, तहस नहस हो जाएंगी। ये क़यामत का मंज़र कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला बयान फरमा रहा, और फिर क्या होगा। व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, कुरान कहता है ज़मीन अपना तमाम बोझ बाहर निकाल देगी, जो ज़मीन का बोझ है ना उसके अंदर, वो सब बाहर निकाल देगी। जलजला आएगा, इमारतें हिलेंगी, गिरेंगी, तबाही होगी, हर चीज़ उलट पुलट होगी, तहस नहस होगी। व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, और ज़मीन अपना बोझ निकाल बाहर करेगी। अच्छा, ज़मीन का बोझ क्या है, आइए देखें हदीस शरीफ की रोशनी में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इसको बयान करते हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सोने चांदी के सुतूनों की मिसल ज़मीन अपने जिगर के टुकड़े उगल देगी। सोने चांदी के सुतूनों की मिसल, अच्छा जब ज़मीन उगलेगी तो फिर क्या होगा। कातिल उनको देख कर कहेगा, इन्हीं की वजह से मैंने कत्ल किया। रिश्ते तोड़ने वाला कहेगा, इन्हीं की वजह से मैंने रिश्ते तोड़े। चोर इनको देख कर कहेगा, इन्हीं की वजह से मेरा हाथ काटा गया। फिर सब इस माल को छोड़ देंगे और कोई भी इसमें से कुछ नहीं लेगा। सही मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है, सुनन तिर्मिज़ी में भी हैं, ये हदीस शरीफ इन दो में मौजूद है, दीगर कुतुब में भी होगी। अब आप गौर करें, ज़मीन अपना बोझ निकाल बाहर करे, सरकार ने फरमाया सोने चांदी के सुतूनों की मिसल ज़मीन अपना बोझ निकाल बाहर करे। अब देखें, सोना चांदी एक धात है ना, इंसान के अंदर एक चीज़ है लालच, हिर्स, हवस। अगर उसे सोना मिल जाए, सबसे कीमती धात है, सबसे महंगी है, सबसे कीमती है, वो चाहता है कि मैं ले लूँ। रिवायत में आता है कि जंगल से तीन दोस्त गुजर रहे थे तो उनको सोना मिल गया। उन्होंने देखा कि सोना है, काफ़ी मकदार में है, सोना उन्होंने उठा लिया। हम ऐसा करते हैं कि तीनों मिलकर आपस में तकसीम कर लेते, अब जाहिर है जब तीन हैं तो उसके तीन हिस्से होंगे, ठीक है। अब इनको भूख लगी तो इन दो ने एक से कहा, यानी तीसरे से कहा, ऐसा करो कि बाजार से कुछ खाना ले आओ, जंगल में थे ना, उसको पैसे दिए, खाना ले आओ, खाना जब आएगा हम मिलकर खाना खाएंगे, उसके बाद इस सोने के तीन हिस्से करेंगे, तीनों में तकसीम हो जाएगा। वो चला गया। जब वो गया तो इन दोनों के दिल में लालच पैदा हो गई, हवस पैदा हो गई। पहले तो ये था कि उसके तीन हिस्से करेंगे, अब इन दो ने आपस में गुफ्तगू की कि यार ये तीन हिस्से जो करेंगे तो इसमें तो सोना कम हो जाएगा, ऐसा ना हो कि हमें कुछ ना मिले और मिले तो बहुत ही कम मिले, तीन हिस्सों में तो बहुत कम होगा, ऐसा क्यों ना करें कि दो हिस्से हो जाएं इस सोने के, आधा तुम ले लो आधा हम ले लें। और तीसरा शख्स जो है, जब ये खाना लेकर आए हम दोनों अचानक इस पर हमला करें और उसे कत्ल कर, जब वो मर जाएगा फिर हम दो रह जाएंगे और हम दोनों दो हिस्से करेंगे, आधा तुम ले लेना आधा मैं ले लूँ। उन्होंने कहा ठीक। अब इन्होंने यहाँ ये काम किया, उधर जो गया हुआ था खाना लेने के लिए, उसने क्या किया, उसके दिल में भी बेईमानी पैदा हुई, उसने कहा कि ये सारा का सारा मैं क्यों ना ले लूँ, वो इनसे भी ज़्यादा हवस परस, लालच उसके अंदर, तमा, इन सब दोनों से ज़्यादा थी। उसने क्या किया कि खाने में जहर मिला दिया, जब मैं खाना लेकर जाऊंगा इनसे कहूंगा कि तुम लोग खाना खा लो, मैं खाकर आ गया, ये लोग खाना खाएंगे, खाते ही मर जाएंगे, पूरा का पूरा सोना मुझे मिल जाएगा। अब आप देखें इंसान की हिर्स हवस, पहले तीन हिस्से होने थे, दो के दिल में लालच पैदा हुई, आधा आधा करने पर इत्तेफाक हुआ, तीसरे को मारने का मंसूबा बनाया, तीसरा जो था वो इनसे ज़्यादा हवस परस था, उसने कहा मैं सारा ले लूँ, उसने खाने में जहर मिला दी। अब हुआ क्या, जब वो खाना लेकर पलटा, जैसे ही वो इनके करीब आया दोनों ने उसको पकड़ लिया और उसको मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसको ख़त्म कर दिया। जब वो मर गया, अब इन्होंने कहा चलो भाई इत्मीनान से बैठकर खाना खाएं, उसके बाद सोना तकसीम करेंगे। ये बैठ गए, इन्होंने खाना खाया, खाने में जहर मिला हुआ था, जैसे ही खाया दोनों उसी वक्त मर गए। अब कैफियत क्या थी, सोना बीच में पड़ा था, तीन लाशें उसके चारों तरफ पड़ी थी, एक अल्लाह का वली वहां से गुजरा, उसने कहा ये है लालच का अंजाम, ये है लालच का अंजाम, अगर आपस में तकसीम कर लेते, एक एक हिस्सा तीनों को मिल जाता, तीन हिस्से, इन्होंने हवस की, वो इनसे ज़्यादा हवस परस था, उसने इनसे ज़्यादा की, इन्होंने आधा आधा करना चाहा, उसने पूरा लेना चाहा, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कहने का मकसद ये है कि इंसान के अंदर जब लालच पैदा हो जाए ना, हिर्स हवस तवा, तो ये चीज़ इंसान को बर्बाद कर देती, और इससे जो चीज़ मिलने वाली होती है वो भी ख़त्म हो जाती। इसलिए हमें चाहिए कि कभी भी लालच, तमा, हिर्स, हवस इन चीज़ों को अपने करीब आने न दे। लालच इंसान को तबाह कर देती है, जो मिलने वाली चीज़ होती है वो भी ख़त्म हो जाती। इंसान कहता है हल में मजीद, और मुझे मिले और मुझे मिले, नतीजा क्या होता है, जो कुछ मिलने वाला होता है वो भी ख़त्म हो जाता। तो इसलिए कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। अब आइए आगे देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु अम्मा नवालु इरशाद फरमाता है यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन ज़मीन अपनी तमाम खबरें बयान कर देगी। अब ज़मीन की खबरें क्या हैं, ज़मीन कौन सी खबरें बयान करेगी, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को तिलावत करने के बाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ज़मीन क्या ख़बर देगी। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बेहतर जानते हैं। آپ نے فرمایا زمین خبر دے گی. کیا خبر دے گی؟ یہ کہ ہر بندے اور بندی کے متعلق یہ بتائے گی کہ اس نے فلا دن زمین کی پشت پر یہ کام کیا تھا, اچھا یا برا, جو بھی کام اس نے کیا. اب آپ ذرا سا غور کریں کہ کتنی اہم اور کتنی خطرناک بات ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے نا زمین پر, نیکی کرتا ہے تو زمین پر, بدی زمین پر, گناہ زمین پر, اچھا کام زمین پر, برا کام زمین پر, نیکی بدی, اچھے برے اعمال سب زمین پر, ظاہر زمین پر رہتا ہے, زمین پر چلتا ہے, زمین پر کھاتا پیتا ہے, تو جو اعمال کرتا ہے وہ زمین پر. یومئذ تحدث اخبارها, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زمین خبریں دے گی, فلا بندے اور بندی نے اس دن, یعنی وہ دن بھی بتائی کہ زمین کی پشت پر یہ کام کیا تھا. اب کیا کام کیا تھا؟ اگر غلط کام ہے تو وہ کہے گی میرے اوپر زنا کیا تھا, میرے اوپر سود کھایا تھا, سود لیا دیا تھا, شراب خوری کی تھی, چوری کی تھی, دھوکہ دیا تھا, ظلم کیا تھا, زیادتی کی تھی. اور اگر نیک آدمی ہے تو کہے گی زمین کہ میرے اوپر اس نے نماز پڑھی تھی, درود پڑھا تھا, تلاوت قرآن کی تھی, جہاد کیا تھا, بیوہ و یتیموں کی مدد کی تھی, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, تمام چیزیں بیان کرے. یعنی اچھے اور برے عمل جتنے بھی ہیں, یومئذ تحدث اخبار, زمین خبریں بیان کرے. اب ایک بات قابل غور ہے, ایک عدالت ہے دنیا کی اور ایک عدالت ہے آخرت کی. زمین خبریں کب بیان کرے گی؟ آخرت میں, دنیا میں نہیں. دنیا کی عدالت میں آپ رشوت دے کر, پیسے دے کر چھوٹ جاتے ہیں, وکیل بک جاتے ہیں, جج بک جاتے ہیں, گواہ بک جاتے ہیں, لوگ پیسے لے کر گواہی دیتے, جھوٹی گواہی. اور اگر کوئی پیسے نہ لے کہ نہیں, وہ کہے کہ میں بالکل سچی گواہی دوں گا, تو مقدمے سے پہلے ہی اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے, یعنی ختم کر دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے اور ہمارے مشاہدے میں ہیں. اچھا, یہ تو دنیا بھی عدالت, پیسے دے کر آپ چھٹ گئے, مقدمہ کسی کے خلاف جا رہا ہے, لیکن جب آخری تاریخ ہوئی پتہ چلا کہ جج نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا, باعزت بری ہو گیا. یہ دنیا کی عدالت کا حال ہے, لیکن ایک آخرت کی عدالت ہے. وہ ایسی عظیم و شان عدالت ہے جہاں پر نہ رشوت چلتی ہے, نہ پیسہ چلتا ہے, نہ کوئی چیز چلتی ہے. وہاں کے گواہ بھی بڑے خطرناک ہیں. گواہ کیا ہوں گے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم, آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پیر کلام کریں گے. ہاتھ کلام کریں گے, مولا میرے ذریعے اس نے غلط کام کیا تھا. پیر کلام کریں گے, مولا میرے ذریعے فلا مقام کی طرف چل کر گیا تھا. اب بتاؤ, زبان جو آج بول رہی ہے اس دن خاموش, اور ہاتھ پیر جو آج خاموش ہیں اس دن ان کو قوت گویائی عطا کر دی جائے. اب اگر کوئی کہے کہ جی یہ ہاتھ تو گوشت ہے, یہ پیر تو گوشت ہے, یہ گوشت کیسے بولے گا؟ تو ذرا سا غور کرو, یہ زبان جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا, اتنا سا. جو خدا اس گوشت کے لوتھڑے کو قوت گویائی دے سکتا ہے, وہ ہاتھوں اور پیروں کو کیوں نہیں دے سکتا؟ یقیناً اس کا اختیار ہے, اس کی قدرت ہے. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ, اللہ فرماتا ہے ان کے منہ پر ہم مہر لگا دیں, ان کے ہاتھ اور پیر کلام کریں گے. ذرا سا غور کیجیے, ہماری زبان بند ہوگی, ہمارے ہاتھ اور پیر خالق کائنات کی عدالت میں گواہی دے رہے ہوں گے. اگر اچھا کام ہے تو اچھے کام کی, یعنی اعمال اگر نیک ہیں تو ان کی گواہی. مولا میرے ذریعے اس نے صدقات و خیرات کیا تھا, میرے ذریعے اس نے فلاں کے سر پر, یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تھا, شفقت کا ہاتھ رکھا تھا, فلاں کی مدد کی تھی. پیر کہیں گے میرے ذریعے مسجد کی طرف چل کر گیا تھا, میرے ذریعے یہ خانقاہ کی طرف چل کر گیا تھا, میرے ذریعے یہ میدان جہاد کی طرف چل کر گیا تھا, میرے ذریعے یہ فلاں مقام کی طرف نیکی کرنے کے لیے گیا تھا. یہ ساری خبریں بیان کی جائیں گی. اور اگر خدا نخواستہ اعمال بد ہیں تو پھر ذرا سا سوچیں, پھر ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ इनकार की गुंजाइश नहीं, जबान तो बोल ही नहीं सकती, जबान बंद है, मोहर लगा दी गई, हाथ और पैर कलाम कर रहे हैं। तीन गवाह, हाथ और पैर, और तीसरे जमीन, यौम इज़्ज़िन तो हद देसो अखबार, जमीन खबरें दे रही है, हाथ और पैर कलाम कर रहे हैं, जबान जो बोलती है वो बंद हो चुकी है, इनकार की गुंजाइश नहीं है। खालिक़े कायनात इन तमाम गवाहों की मौजूदगी में अब अगर फैसला करे तो क्या होगा? गवाह तो मुस्तनद हैं, और वो गवाह भी वो हैं कि जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता, गवाह भी वो हैं कि जो कयामत के दिन ही बोलेंगे, गवाह भी वो हैं जो रब के हुक्म से बोलेंगे, तो फिर इनकार की कोई गुंजाइश हो? मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कयामत के उस मुआखजे से बचने के लिए इस दुनिया में हमें चाहिए कि हम अपने आमाल, अफ़आल और किरदार को दुरुस्त कर लें। जब यहाँ पर आमाल दुरुस्त होंगे तो हाथ और पैर वही गवाही देंगे। जब इस ज़मीन पर किसी का हक खाया नहीं होगा, अमानत में खयानत नहीं की गई होगी, बेवाओं यतीमों का माल गसब नहीं किया होगा बल्कि उनके माल की हिफाजत की होगी, अमानत में खयानत नहीं, अमानत उसके अहल तक पहुँचाई होगी, जब ये सारे नेक काम होंगे तो आप समझें यही खबरें ज़मीन देगी और यही गवाही हाथ और पैर देंगे। इसलिए हमें चाहिए कि इस दुनिया ही में अपने आमाल व अफ़ाल व किरदार को दुरुस्त कर लें ताकि क़यामत के दिन इन तमाम चीज़ों से हम बच जाएं, उस शर्मिंदगी से हम बच जाएं। अब आइए आगे देखें, यौम इज़िन यस्तुरुन्नास अश्तातल लियुरौ आमालहुम, अल्लाह फरमाता है उस दिन लोग मुख्तलिफ अहवाल में लौटाए जाएंगे, उन्हें उनके आमाल दिखाए जाएंगे। कैसे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर शख्स अपने आप को मलामत कर रहा होगा, जो नेकोकार होगा वो ये कहेगा कि मैंने ज़्यादा नेकियां क्यों नहीं की, और जो इसके अलावा होगा वो कहेगा मैंने गुनाहों को तर्क क्यों नहीं किया। यानी उस वक्त वो अपने आप को मलामत कर रहे होंगे, काश हम ज़्यादा नेकियां कर लेते, हमें इतना वक्त मिला था हमने कम नेकियां की, और जो गुनाहगार है वो कहेगा काश मैंने गुनाहों को तर्क कर दिया होता, मैंने अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दिया होता, मैंने भी नेक अमल किए होंगे। इसका मतलब ये है कि वो सब अपने अहवाल पर लौटाए जाएंगे, उनके आमाल उनको दिखाए जाएंगे। फ़मन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी उसको वो देखेगा, यानी उसका सिला मिलेगा, और एक ज़र्रा बराबर बदी की होगी, गुनाह किया होगा उसका भी सिला उसको मिलेगा जो कुछ उसने किया। तो ये सूरह मुबारका इंसान के ज़मीर को, उसके कल्ब को, उसके जहन को हिला रही है, झंझोड़ रही है, बता रही है, समझा रही है, ऐ गाफिल इंसान, क़यामत के उस मौक़े से बचने के लिए आज अपने आमाल व अफ़ाल व किरदार को दुरुस्त कर लो ताकि क़यामत के दिन तुम उस अजीम अदालत में जिसमें तुम्हें खड़ा किया जाएगा, जहाँ हाथ और पैर गवाही देंगे, जहाँ ज़मीन गवाही देगी, जहाँ तुम्हारी ज़बान बंद होगी, तुम बोल नहीं सकते होगे लेकिन तुम्हारे हाथ और पैर बोल रहे हों, गवाही दे रहे हों, उस मौक़े से, उस अदालत से बचने के लिए आज इस दुनिया में नेक अमल करो, और उसके बाद बेफिक्र हो जाओ और सोच लो कि तुम्हारे हाथ भी अच्छी गवाही दें, तुम्हारे पैर भी अच्छी गवाही दें, और वो ज़मीन जो अपनी ख़बरें बयान करेगी, यानी मेरे ऊपर फला बंदी और बंदे ने क्या किया, वो अच्छी खबरें दे, वो ख़बरें ये दे कि मेरे ऊपर मौला इसने नमाज़ पढ़ी थी, इसने दुरूद पढ़ा था, तेरे हबीब पर दुरूद व सलाम पढ़ता था, मेरे ऊपर इसने कोई गलत काम नहीं किया, नेक आमाल किए। तो जब हम इस तरह करेंगे इंशाअल्लाह ताला क़यामत के उस मौक़े से हम बच जाएंगे। दुनिया दारुल अमल है, हमें चाहिए कि इस दुनिया में अमल करें, क्योंकि दुनिया और आखिरत का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। यहाँ पर अगर अमल नेक है तो जज़ा है, और अमल बद हैं तो सज़ा है। سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی، جو یہاں پر تم بوگے وہی وہاں پر کاٹ لو گے، تو یہاں سے نیک اعمال کرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرتے رہو، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہی کرو، اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو روزانہ بار بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔